ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जन्म के तीन भेद होते हैं। कैसे तीन भेद? समूर्चन जन, गर्भजन और उपपाद जन। तीन लोक के संसारी प्राणी तीन ही प्रकार से जन्म लेते हैं। समूर्चन जन्म से जन्म लेते हैं या गर्भ जन्म से जन्म लेते हैं या तो उपपाद जन्म से जन्म लेते हैं। गर्भ जन्म से जन्म लेने वाले तीन प्रकार से जन्म लेते हैं, जराजन, अंडजजन, पोतजन। जरायुजन, अंडजजन, पोतजन, ये तीनों प्रकार के जन्म यानी जरायुज, अंडज और पोत तिरंश गति में हैं। मनुष्य गति में एक ही प्रकार का है, जराजन, जरायुजन। तिरंच गति में तीनों प्रकार के जन्म हैं। केवल तिरंच गति में ही तीनों प्रकार के देव तो उपपाद जन्म वाले हैं, नारकी उपपाद जन्म वाले हैं, मनुष्य जरायुज हैं, और किंतु तिरंच जरायुज भी है, अंडज भी है और पोत भी है। वैरायटी बहुत है। तिरंच गति को ही समझना बड़ा मुश्किल है। जन्मों का इतना विस्तार बताया गया है कि सबसे ज़्यादा समय खर्च होता है तिरंच गति को समझने के लिए। उसमें क्या क्या समझे? निगोद समझे कि एक इंद्रिय को समझे कि विकलत्रय को समझे, पंचेंद्रिय को समझे, उसमें जरायुज, अंडज, पोतज किसको किस किस को समझे। बहुत भेद प्रभेद होते चले जाते हैं। 85 भेद हैं तिरंचों के। 85 स्थान पर जन्म ले सकता है मनुष्य। कितने स्थान पर जन्म ले सकता है? बस ये कि जरायुज जन्म हो गया या समूर्छन जन्म, जो गर्भ से उत्पन्न होता है, होते हैं, जो गर्भ जन्म वाले मनुष्य होते हैं, उन गर्भ जन्मों के भीतर जो तीन भेद हैं, जरायुज, अंडज, पोत, उसमें तो एक ही प्रकार का जन्म है ना मनुष्य को और तिरंच को। तीनों प्रकार का है। मनुष्य कोई अंडज है क्या? अंडज मनुष्य जो अंडे से उत्पन्न होते हों? होते नहीं। गर्भ जन्म के भीतर जो तीन भेद आए हैं, दो है ही नहीं, पोत भी नहीं और अंडज भी नहीं। इन अंडज त्रेंचों के संबंध में समझना है। कौन सा हो गया था? त्रेंच का। हाँ, त्रेंच का हुआ है ना। हाँ, वो चल रहा है क्या? हाँ, ठीक ठीक ठीक, यहीं रुका है। कर्म भूमिज तिर्यंच संगी, कर्म भूमिज तिर्यंच संगी, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जलचर, जल में रहने वाले, थलचर, भूमि पर रहने वाले, नवचर, आकाश में उड़ने वाले। जलचर, थलचर, नवचर और मनुष्य, ऐसा होता है क्या? मनुष्य तो थलचर ही है, भूचर। विद्याधर भी भले ही हो आकाश में विद्या प्राप्त करने के बाद वो चलते हैं, परंतु वो जन्म का भेद नहीं हो सकता, रहने का स्थान नहीं हो सकता। आकाश में चलना बात दूसरी है, आकाश से जाना बात दूसरी है, लेकिन आकाश से ही जिनका, आकाश में ही जिनका वास हो, ऐसा नहीं। तो जलचर, थलचर, नवचर ये भी भेद त्रिरंच गति में है, मनुष्य गति में नहीं। मनुष्य तो केवल थलचर ही। ये पर्याप्तक अवस्था में कितने गुण स्थान है? हाँ, त्रिरंच को पांच गुण स्थान, एक से लेकर पांच तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में एक से दो, एक और दो। हाँ? नहीं, कर्म भूमिज में देख रहे हैं, कर्म भूमिज तिर्यंच संगी, इसमें कौन सा गुण स्थान नहीं है? चौथा नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, कर्म भूमि का तिर्यंच, कर्म भूमि में ही चौथे गुणस्थान के साथ मरण कर कर्म भूमि का ही तिर्यंच नहीं बनता, इसलिए चौथा गुणस्थान नहीं है, दो ही गुणस्थान हो गए। वही भोग भूमि में देख लो, इस तरफ के कॉलम में राइट साइड कितने गुणस्थान हैं? निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में एक, दो, चार हैं। तो दो क्यों हैं? दूसरा गुणस्थान वाला ये वहां पर पर्याप्तक अवस्था में भी दूसरा गुणस्थान हो सकता है, और अपर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में भी दूसरा गुणस्थान हो सकता है, और लब्धि अपर्याप्त त्रिरंच तो भोग भूमि में होते नहीं है, कर्म भूमि में होते हैं, निर्वृत्ति लब्धि अपर्याप्तक। उनकी चर्चा तो पीछे हो चुकी है। लब्धि अपर्याप्तक जो होते हैं वो सम्मूर्छन ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर भेद उनका नहीं लिया है, पीछे हो चुका है, सेपरेट चार्ट है उनका। तो भोग भूमि में जो दूसरा गुणस्थान बन रहा है, ये पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से भी बनेगा, और पीछे से कोई कर्म भूमि का मनुष्य त्रिरंच भोग भूमि में जाकर के जन्म ले रहा हो, तो वह त्रिरंच आयु को बांध करके यहाँ आ रहा है, तो दूसरे गुणस्थान के साथ भी आ सकता है, पहले गुणस्थान के साथ भी आ सकता है, और चौथे गुणस्थान के साथ भी आ सकता है। कहाँ पर? भोग भूमि में। भोग भूमि में एक भूमि वो है जो कुभोग भूमि है, जो उसके नीचे लिखा है, कुभोग भूमिज त्रिरंच संगी, इसमें थलचर और नवचर, नवचर जरायुज नवचर कौन है, इसके लिए शंका आती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो पर्याप्तक अवस्था में उभौ भूमि में कितने गुणस्थान हैं? पहले से लेकर चार तक चार गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान पर्याप्तक अवस्था में है। पहला गुणस्थान पर्याप्तक अवस्था में हो सकता है और दूसरा गुणस्थान भी पर्याप्तक अवस्था में हो सकता है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक में पहला भी है और दूसरा भी है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते ही दूसरा गुणस्थान कहने पर ये फट से समझ में आना चाहिए कि वो पीछे से ले आ रहा है, वहां प्राप्त नहीं करता दूसरा गुणस्थान। सम्यक तो से च्युत होने के बाद ही ये गुणस्थान बनता है। किस सम्यक से च्युत होने के बाद? प्रथमोपशम सम्यक तो से च्युत होने के बाद दूसरा गुणस्थान बनता है। अगर दूसरे गुणस्थान में गिरते वक्त मरण हो गया तो दूसरे गुणस्थान सहित उपभोग भूमि में वह जन्म लेता है। अपर्याप्तक अवस्था में दूसरा गुणस्थान रहता है और पर्याप्तक अवस्था में जाते ही पहला गुणस्थान होगा। और फिर पहला गुणस्थान होने के बाद अंतर मुहूर्त के उपरांत वह सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करे तो चौथा गुणस्थान भी हो सकता है। कुभो भूमि का जीव, ये कुभो भूमि में व्यवस्था है। और कर्म भूमि जो तिर्यंच असंगी दूसरे में आया है, चौथे में आए, चौथे गुणस्थान से गया है, गया। वो सम्यक दृष्टि यदि है तो वह निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में भी चौथा गुणस्थान रहेगा, पर्याप्ति भी वो उसमें पूर्ण कर लेगा वो। हाँ, सम्यक दर्शन वहाँ निर्वृत्ति अपर्याप्तक में छूट नहीं सकता। हाँ, छूटेगा नहीं, क्योंकि क्षोपशम सम्यक दर्शन का काल नहीं, प्रथमोपशम क्षोपशम सम्यक दृष्टि जाता है चौथे गुणस्थान के साथ। उपशम सम्यक दृष्टि जाएगा तो दूसरे के साथ जाएगा, पहले के साथ भी जा सकता है, पर दूसरे के साथ जाएगा तो दूसरा गुणस्थान वहाँ केवल अपर्याप्तक अवस्था में रहेगा। किंतु पर्याप्तक अवस्था में जो सम्यक दृष्टि रहता है, ये नहीं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में जो सम्यक दृष्टि रहता है वह क्षोपशम सम्यक दृष्टि ही समझ लेना चाहिए, और या तो क्षायिक समझ लेना चाहिए। भोग भूमि में है तो, कुभोग भूमि में तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। हाँ, भोग भूमि में चौथे गुणस्थान के साथ जन्म हो सकता है, किंतु कुभोग भूमि में नहीं हो सकता। हाँ, क्षायिक सम्यक्तो के साथ जन्म हो जाएगा, चौथा गुणस्थान रहेगा फिर निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में। क्षोपशम सम्यक्तो के साथ जाएगा क्या? तो कहते हैं वेदक सम्यक दृष्टि जा सकता है, कृतकृत वेदक, क्योंकि वो प्रक्रिया में है, वो छूटता नहीं। क्षोपशम सम्यक्तो हो तो छूटेगा, नरक जाते समय और तिरंच गति में जाते समय क्षोपशम सम्यक्तो तो छूटता है, लेकिन कृतकृत वेदक नहीं छूटता। इस अपेक्षा से वहां पर क्षायुपशम सम्यक तो या वेदक सम्यक तो है, इस प्रकार कहने में आता है। हाँ, क्षायिक सम्यक तो के साथ घटा दो या तो वेदक सम्यक तो के साथ घटा दो, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान भोग भूमि में बनेगा। अब नीचे म्लेच्छ खंडज, देखो यहां पर भी ब्रैकेट में वो लगा दिया, और टिप्पणी में दूसरा गुणस्थान कैसे ये चौक बना करके दिखा। असंगी में मतभेद है, देखे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश दूसरा भाग पेज नंबर 315। ओ साइड यानी लेफ्ट साइड, ब साइड भी है यानी राइट साइड, वहां पर इसका कथन आता है। इसमें मतभेद है, किसके साथ मतभेद है? कर्म भूमि जे तिर्यंच असंगी पर्याय में जा रहा हो कोई जीव, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में दूसरा गुणस्थान होता है या नहीं, इसमें मतभेद है। का मतलब दृष्टि भेद है, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है ये ठीक लगता है, हो सकता ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से मरने वाला जीव योग्य पर्याय में जाता है, अयोग्य पर्याय में नहीं जाता। उसमें जो देखो संगी बनना और असंगी बनना, इसमें योग्य पर्याय कौन सी, संगी योग्य है। द्वितीय गुणस्थान इतना पतित गुणस्थान नहीं है, अभी अभी सम्यक्त्व के परिणामों से च्युत हुआ है, तो वह संगी ही बनना चाहिए। किंतु इसमें दृष्टिभेद होने से टिप्पणी दिया गया है कि वह असंगी भी बन सकता है, ऐसा भी मिलता है। फिर म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंडज तिर्यंच जलचर थलचर नवचर संगी व असंगी। देखो म्लेच्छ खंड में विशेषता क्या है, संगी जीव भी हैं तिर्यंच, असंगी जीव भी हैं। ये गर्भज के जो दो भेद हैं, संगी जीव भी हैं असंगी जीव भी हैं, किंतु इनके मलमूत्र में उत्पन्न होने वाले समूर्छन जीव नहीं पाए जाते। हाँ म्लेच्छ खंड में समूर्छन जीव, लब्धि अपर्याप्तक समूर्छन पंचेंद्री या लब्धि अपर्याप्तक समूर्छन असंगी पंचेंद्री नहीं पाए जाते उनके मलमूत्र में, कहां पर, म्लेच्छ खंड में। किंतु भोग भूमि में और म्लेच्छ खंड में इतना ही अंतर है। देखो भोग भूमि में भी तिरंच रहते हैं, जलचर नहीं रहते, थलचर हैं और नवचर हैं, वो संगी ही हैं, असंगी नहीं है। और संगी में भी समूह उनकी उनका मलमूत्र होता नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता संगी पंचेंद्रिय समूर्छन जीव उनके मलमूत्र में हो, तो वो नहीं होते। यहाँ और वहाँ म्लेच्छ खंड में और भोग भूमि के जीवों में फर्क इतना पड़ा कि म्लेच्छ खंड में संगी जीव भी होते हैं, असंगी जीव भी होते हैं, और मलमूत्र होते हुए भी इनके मलमूत्र में समूर्छन जीव नहीं होते, और भोग भूमि में मलमूत्र होता ही नहीं, इसलिए समूर्छन जीव होते नहीं। देखो भोग भूमि में त्रियंच भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, लेकिन मलमूत्र नहीं है। भोग भूमियों को मलमूत्र नहीं है, मलमूत्र से रहित शरीर तीर्थंकरों के जैसे। त्रियंच का भी भाग्य, जो तीर्थंकर को जन्मतः मलमूत्र नहीं है, वैसा ही त्रियंच गति में भी किसी को जन्मतः मलमूत्र नहीं है। नई बात मिल गई, तो भोग भूमि के तिरंच को मलमूत्र नहीं है, और वो सब शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते, कल्प वृक्ष से प्राप्त आहार करते हैं। हाँ हाँ, जिनका आहार कल्प वृक्ष है उनका मलमूत्र नहीं होता, ऐसा भी घटा सकते हैं, परंतु किसी न किसी पर्याय में तिरंच का भी तो भाग्य है कि जन्म से मलमूत्रधारी ना हो। नहीं तो यहां तो कर्म भूमि में तो तीर्थंकर आदि को है, शलाका पुरुषों को त्रिशिष्टि शलाका पुरुषों को मलमूत्र नहीं। कुछ तो विशेषता है त्रिंच में, वो भी तो किसी न किसी मामले में श्रेष्ठ निकले। कुबो भूमि का बताएंगे, म्लेच्छ खंडज तिर्यंच जलचर थलचर नवचर संगी व असंगी। इसमें पर्याप्तक भी होते हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक भी होते हैं, लेकिन ये दोनों गर्भ जन्म वाले हैं, किंतु इन गर्भ जन्म वालों के मलमूत्र में समूर्छन जीव न संगी में है न असंगी में। दूसरी बात म्लेच्छ खंड में और क्या विशेषता है ध्यान में रखे, म्लेच्छ खंड में विकलत्रय जीव भी नहीं होते, जबकि कर्म भूमि है। म्लेच्छ खंड कर्म भूमि कहलाता है, फिर भी विकलत्रय नहीं है, तो एक दृष्टि से देखो सबसे बड़ा पाप तो आर्यखंड के लोग ही करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से द्विंद्री जीव का घात, एकेंद्री जीव का घात, तीनेंद्री जीव का घात, सभी जीवों का घात होता है। म्लेच्छखंड में यह संभव नहीं है, द्विंद्री जीवों का घात नहीं होगा, और मलमूत्र में समूर्छन जीवों का घात नहीं होगा। घात होगा तो केवल गर्भ जीवों का ही घात होगा, आपस में कोई झगड़ा हुआ और एक दूसरे से हिंसा कर लिए तो हिंसा हो सकती है, युद्ध आदि भी वहां हो सकते हैं, युद्ध आदि भी हो सकते हैं। इतना बड़ा पाप नहीं होता। यहां पर कितने कितने प्रकार का पाप करता है, पानी पी रहा है तो अनछना पानी पी रहा है, उसमें भी द्विंद्री जीवों का घात, असंख्य कितने संख्यात जीवों का घात, 4436, 6000, 3000, 36000, नहीं नहीं हाँ एक बूंद में है वो। फिर अनछना पानी, संख्यात जीवों का घात तो हो रहा है, सैकड़ों जीवों का घात, हजारों जीवों का घात हो रहा है प्रत्येक बूंद में। एक बूंद पानी पियोगे तो इतने जीवों का घात। हाँ नहीं, एकेंद्री जीव तो उसमें है, विकलत्र जीव नहीं है। हाँ दिन में प्रकाश होने के कारण पानी रुका रहे तो जब वहां भी पानी बरसता है, बादल होते हैं, सभी व्यवस्था तो यहाँ जैसी वैसी तो है, किंतु जहाँ पानी तपेगा वहां भी प्रासुक होगा, यहाँ भी होता है, वही होता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। यहाँ पर भी तालाब का पानी तप जाता है तो ऊपरी स्तर जो है प्रासुक हो जाएगा। असंख्यात द्वीप समुद्रों में, क्योंकि वहां की बात थी, यहाँ तो सूर्य चंद्र भ्रमणशील है, ये ढाई द्वीप के, वहां पर भ्रमण नहीं करते, ढाई द्वीप के बाहर के असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहने वाले सूर्य चंद्र स्थिर हैं, तो स्थिर हैं तो उनका प्रकाश निरंतर पड़ेगा, और निरंतर पड़ेगा तो पानी भी तपेगा, तपेगा तो ऊपरी स्तर जो है वह प्रासुक बन जाएगा, और तीर्थंकरों के अभिषेक के लिए वहां से लाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, प्रासुक पानी लाते हैं। वहां पर वैसे ही विकलत्रय नहीं है, बहुभूमि के अंतर कोटि में आते हैं वो, विकलत्रय तो वैसे ही नहीं। और एकेंद्रीय जो हैं वो जल कायिक तो हैं, किंतु वो जल कायिक भी ऊपरी स्तर पर नहीं होते, ये अनुमान किया जा सकता है, प्रासुक पानी लाते हैं। परंतु जिस तीर्थंकर का अभिषेक उस पानी से हो रहा है, उन समुद्रों के पानी से हो रहा है, वह प्रासुक हो या अप्रासुक हो क्या फर्क पड़ता है, तीर्थंकर बालक तो असयम है। तीर्थंकर बालक तो असयम है, उनको चाहे जीव सहित से करो, जीव रहित से करो, बात तो असयम की है। यहां मंदिरों में जो अपन अभिषेक करते हैं, इनका अभिषेक तो प्रासुक जल से ही होना चाहिए, क्योंकि वो महाव्रति, अपन ने महाव्रत दिया है कि नहीं प्रतिमाओं को, तो फिर एकेंद्रीय जीवों से स्पर्श करेंगे तो महाव्रत कहां रहे। नंदीश्वर द्वीप में हाँ वहीं के जल से होता है, हाँ वहीं के जल से होता है, पर प्रासुक रहता है ऐसा, क्योंकि स्थिर है ना सूर्य चंद्र, प्रासुक जल से करते हैं वो। देवों की पूजन पद्धति में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती, ये चिंतन करो, चिंतन के लायक विषय है, क्योंकि जल भी लाते हैं तो प्रासुक मिल रहा है, क्योंकि सूर्य चंद्र आदि स्थिर हैं, इसलिए उनको गर्म नहीं करना पड़ेगा प्रतिमाओं का अभिषेक करने के लिए, ठीक है ना, गर्म करना पड़ेगा क्या, देव कहां से लाएंगे शिगड़ी वो गैस वगैरह बर्तन वगैरह कहां से लाएंगे, तो कलश वगैरह ले जाते होंगे, विक्रिया से बनाते होंगे, और पानी वहीं का उठा लिया, अभिषेक कर लिया, गंधोदक ले लिया। देवों के जो आठ द्रव्य होते हैं वो सारे के सारे प्रासुक ही होते हैं। इसलिए मनुष्य यदि देवों का आठ द्रव्यों से पूजन करने का अनुकरण किया है तो इसको भी प्रासुक का ही अनुकरण करके प्रासुक द्रव्यों से ही पूजन करना चाहिए। ये ऐसा चिंतन करो, चिंतन में भटकना नहीं, भटक गए तो भटक गए, बहुत दूर चले जाएंगे। आचरण में इसलिए नहीं आ रहा है कि ये ज्ञान ही नहीं था ना। पहले क्या कल्पना थी कि फलानी ग्रंथ में ऐसा लिखा है, फलानी ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये चलता है वो चलता है, ये चलता है वो चलता है, ये चर्चा होती रही, इसलिए आचरण में नहीं आया। हमारी श्रद्धा ही भटकती रही ना, किसका किससे करे, श्रद्धा भटकती रही, निर्णय भटकता रहा हमारा, एक निर्णय नहीं हुआ। यदि आप आगम से ही निर्णय करना चाहते हैं तो ऐसा चिंतन करो और निर्णय करो, प्रासुक से ही, उसमें जीव सहित किसी भी वस्तु को उपयोग में मत लाओ, यही आगम पद्धति है। और देव लोग देखो, हमने अनुकरण किसका किया है, देवों का, देवों का, तो देवों का किया है तो देव क्या सचित्त से करते हैं? बोलो किस, कौन सा सचित्त द्रव्य है उनके पास? जल, चंदन, चंदन तो प्रासुक ही होता है, जल है चंदन है प्रासुक ही रहते हैं। प्रासुक यानी क्या, प्रासुक मतलब क्या, जीव रहित। और सचित्त का मतलब क्या, और अप्रासुक का मतलब क्या, जीव के साथ, क्योंकि शब्द भी बहुत कठिन पड़ जाते हैं। ये प्रासुक प्रासुक क्या बोलते हैं महाराज जी? बहुत बार ऐसा होता है, प्रासुक यानी जीव रहित, जिसमें एकेंद्री जीव भी नहीं है और द्विंद्री जीव तो है ही नहीं, ऐसे द्रव्यों से पूजन करना ये प्रासुक पूजा है। देव लोग क्या क्या जुटाते हैं देख लो, तो एक बार देख लें इसको। जल हो गया प्रासुक है, चंदन हो गया प्रासुक है, अक्षत हो गया प्रासुक है, कल्प वृक्ष अक्षत, कल्प वृक्ष प्राप्त अक्षत, जल चंदन अक्षत, पुष्प, पुष्प भी कल्प वृक्ष के, और वो कल्प वृक्ष पृथ्वी काय बताया है तिलोत्पन्नति में, कायिक नहीं बताया, पृथ्वी काय बताया, काय कहने से जीव रहित और कायिक कहने से जीव सहित लेना चाहिए। तो गाथा में उल्लेख है कि वो पृथ्वी काय है, कायिक नहीं, तो काय से उत्पन्न पुष्प जो आपने कल्पना की, मुझे पुष्प चाहिए पूजन के लिए, तो कल्प वृक्ष के वो पुष्प बन करके आ जाएंगे, वो वनस्पति के नहीं रहते, वो पृथ्वी काय के रहते हैं। ये कल्प वृक्ष पृथ्वी काय से बने हुए, वे पृथ्वी जीव रहने का सवाल ही नहीं उठता। देखो पृथ्वी काय में निगोदी जीव तक पाया नहीं जाता, अभी निगोदी जीव कहाँ कहाँ रहते, कहाँ कहाँ नहीं रहते बताया था, पृथ्वी काय में नहीं रहते, जल काय में नहीं रहते, ये बताया था ना, तो वो वैसे निगोदी जीव तो है ही नहीं, किंतु पृथ्वी कायिक तो होना चाहिए था, वे भी नहीं है। तो शुद्ध पुष्प हो गया, प्रासुक हो गया, वो अब प्रासुक नहीं रहा, तो पुष्प भी जो जुटा रहे हैं प्रासुक जुटा रहे हैं देवलोग। अब कौन सा आया, चरु, चरु यानी जो क्षुधा, हाँ क्षुधा, क्षुधा निवारण का उपाय है, उसको नैवेद्य बोला जाता है। तो क्षुधा निवारण किस किस से करते हैं, जो खाने की चीज है वो सभी क्षुधा निवारण की ही वस्तु है। अब उसमें सभी चढ़ाएं क्या, भात भी चढ़ाएं, रोटी भी चढ़ाएं, ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರಿಸೋದೇನ. ದೇಖೋ ವಹಾ ಪರ್ ಹಮ್ ಜೋ ದ್ರವ್ಯ ಲೇ ಜಾತೆ ಹೇ ನೈವೇದ್ಯ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ವೋ ಕೇವಲ ಏಕ ಪ್ರತೀಕ ವಸ್ತು ಹೇ. ಕ್ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಖಿಲಾನೆ ಕಿ ವಸ್ತು ಹೇ? ಭಗವಾನ್ ಖಾ ಸಕ್ತೆ ಹೂ ತೋ ಸಭಿ ಲೇ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಥೆ. ಭಾತ್ ರೋಟಿ ಚಾವಲ್ ಜೈಸೆ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಆಹಾರ ಕರಾತೆ ಹೇ, ವೈಸೆ ಪೂಜನ್ ಕೆ ಕಾಲ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭೋಜನ್ ಕರಾ ಕೆ ಪೂಜನ್ ಕರ ಸಕ್ತೆ ಥೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೋ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿತ ಹಮ್ ಉನ್ಕೋ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಕ್ಯಾ? ಹಮಾರಿ ಕ್ಷುಧಾ ಕೋ ನಿವಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರತೀಕ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ತುಲನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲೇ ಗಯೆ ಹೇ? ये तुलना के लिए ले गए हैं ना कि खिलाने के लिए ले गए हैं? कोई ऐसी कल्पना करें कि भगवान को तो अच्छे अच्छे व्यंजन चढ़ाने से अच्छी पूजा होती है, तो ये ठीक नहीं. क्योंकि भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन चढ़ा रहे हैं तो भगवान को चढ़ाने के लिए ले गए हैं क्या? हाँ, उनको क्षुधा है क्या? उनको भूख है क्या? फिर उनको चढ़ाने से क्या मतलब है? इनको तो देव लोगों को भी चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि देव कौन से आहारी होते हैं? मानसार अमृत आहारी होते हैं. बाहर का कुछ नहीं खाते देव लोग, अमृत सेवन करते हैं. तो अन्य संप्रदाय में जो देवों की पूजा होती है, सुनना, वो क्या खाद्य पदार्थ व्यंजन पदार्थ देव लोग खा सकेंगे? वहां पर भी वो मिथ्यात्व है. उस दृष्टि से देखो तो वहां पर भी वो मिथ्यात्व है उससे पूजन करना, क्योंकि देव अमृत आहारी और हम नैवेद्य चढ़ाने से क्या मतलब उनको? हमारे नैवेद्य से कभी वो संतुष्ट नहीं हो सकते. उनको अमृत देव, अमृत अमृत देव, अमृत से पूजन करो. फिर उनको ही अर्पण करना है तो अमृत से अर्पण करके पूजा करो. हाँ, हमारे पास अमृत होता तो हम किसी की पूजा ही नहीं करते. हाँ, फिर क्यों कहें कि क्षुधा रोग निवारण आय, वो तो मिटने वाला नहीं. ये सोचने लायक है. देखो क्या चढ़ाया? नैवेद्य. नैवेद्य चढ़ाए तो चढ़ाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? जो प्रशस्त होता है और भोजन सामग्री जैसा नहीं लगता, किंतु है नैवेद्य के रूप में खाद्य एक वस्तु, ऐसे वस्तु को चढ़ाया जाता है. जैसे आप लोग खोबरे का टुकड़ा चढ़ाते हैं नैवेद्य के रूप में, तो ये तो प्रशस्त लगता है. वहां पर भात ले जाएंगे तो क्या होगा? मक्खियां भनभनाने लग जाएंगी. गुड़ खीर वगैरह ले जाएंगे, चिड़ियां जुड़ जाएंगी और मक्खियां जब सबसे ज्यादा सताएंगी उनको, ऐसा ऐसा करते फिर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा है मच्छी. और मक्खियां बैठ गई तो अशुद्ध हो गया. मक्खियां बैठ गई तो पदार्थ अशुद्ध हो गया क्या? नहीं. अशुद्ध पदार्थ को कैसे चढ़ाओगे? और सोले से आए हैं, पवित्र निर्मल द्रव्य चढ़ाने के लिए निर्मल पवित्र करके लाए, धो करके लाए हैं, बना करके लाए हैं, तो उसकी पवित्रता पूजन करने के अंतिम समय तक बचे, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है. निर्मलता बचे, उसकी पवित्रता बचे, तो जिस पर मक्खियां नहीं बैठती, जो चींटी वगैरह आकर्षित नहीं हो सकते, ऐसे चीजों का उपयोग करना, ये अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक है और विवेक के दृष्टिकोण से भी ठीक है और आगम से भी ठीक है. सब ओर से ठीक है. ये आगम आधार से भी ठीक है. आगम आधार तो यही कहता है कि आप प्रासुक से करो और प्रशस्त द्रव्यों से करो. ये हो गया. अब दीप, दीप रत्न दीप ही मिलते हैं भोग भूमि में. ऐसे घी डाल करके वहां गाय नहीं है जो दूध देती हैं और उसके घी का उपयोग करके आरती जला करके हम दीप का उपयोग करें, ये दीप वहां नहीं चलता. रत्न दीप, देखो महल में वे रहने के लिए उनको बाती चाहिए कि नहीं, लाइट चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पर क्या करंट की व्यवस्था है क्या? नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, अग्नि की व्यवस्था नहीं और घी की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर क्या है? रत्नदीप है। स्वर्ग में जो देव लोग जो कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं वहां पर रत्न दीप को लेकर के जाते हैं। दीपम निरुपामिति स्वाहा मंत्र आते ही वो एक एक रत्न चढ़ाते हैं और चढ़ाए हुआ वो रत्न वापस नहीं लेते। प्रकाश उसका भी है ना, निकल रहा है कि नहीं? कई क्योंकि ये इसलिए कहना पड़ता है, कई लोगों की ऐसी भ्रांति है कि ये जो दीप चढ़ाते हैं और चढ़ा करके रखते भी हैं और वापस भी लेते हैं, चढ़ा करके रखते भी हैं और वापस लेते हैं, वही वही हो रहा है। चढ़ाने के बाद तो निर्माल्य होता है, कोई भी चीज़ आठ द्रव्य में से कोई भी चीज़ चढ़ाओ, चढ़ाने के बाद स्वाहा कह दिया क्या? नहीं, वो द्रव्य वापस लेने लायक नहीं रहा, निर्माल्य हो गया। तो इसमें कुछ लोगों का क्या कहना है कि हम दीप नहीं चढ़ाते, हम चढ़ाते हैं किरणों को। बताओ, किरण तो प्रत्येक समय दीप का निकल रहे हैं और उनको हम चढ़ाते हैं, हम आरती नहीं चढ़ाते, तो ये कोई बात नहीं होती। तो रत्न दीप के भी तो किरण निकलते हैं, तो रत्न को, एक ही रत्न को चढ़ाओ ना। ऐसा करते हैं क्या देव लोग? कितने रत्न चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते वहां राशि लग जाती है। एक रत्न चढ़ाया तो वापस नहीं लेते, ऐसा वो भी कर सकते थे कि उससे कि उसके भी किरणें निकलती, हम रत्न नहीं चढ़ाएंगे, रत्न हम नहीं चढ़ा रहे हैं, किरण चढ़ा रहे हैं, ऐसा देव लोग भी कह सकते थे। ऐसा वहां है क्या? तो ऐसा सोचना भी उचित नहीं कि हम दीप चढ़ा रहे हैं तो उसको, आरती चढ़ाने में कोई तथ्य नहीं है, उसमें हिंसा भी हो रही है, अग्नि जलानी पड़ेगी कि नहीं, विवेक से सोचना पड़ेगा। केवल इन्हीं विषयों को लेकर के खिंचाता नहीं और विकल्प करते हुए बैठने से कुछ नहीं होता, आगम के अनुसार कैसे विवेक से चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए ये सोचना चाहिए। देखो, देव भी चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, फिर ऐसा क्यों कहना चाहिए कि ये दीप नहीं चढ़ाते, ये कांजीपंती टाइटल रख देते हैं। आगम का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, किसी को कांजीपंती कहो, किसी को बीसपंती कहो, किसी को अधर्मी कहो, बहुत कहना बहुत आसान है, लेकिन कैसे कांजीपंती सिद्ध करके बताओ कहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, ये मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर हाँ हाँ कह करके टाल के चले जाओगे। ऐसा नहीं, सोच के करना चाहिए, सभी विवेक से ही करना चाहिए। आगम में जो कहा है ना, उसका चिंतन करो ना, ये अनुकरण हमने किससे किया है? देवों का। तो देवों का अनुसरण किया है, तो वहां पर एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो जीवों की हिंसा से युक्त हो। अब कालांतर में जो ग्रंथ लिखे गए वो गड़बड़ कर गए, वो मूल से हट गए। प्रासुक पद्धति प्राचीन थी और ये सचित्त पद्धति बाद में आ गई, ये गड़बड़ हो गया, कालांतर ग्रंथों से गड़बड़ हो गया है। इसलिए आज समाज में जो है ना, द्रव्य को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के विकल्प होता है लोगों को, पर कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, चिंतन नहीं करता। चिंतन स्वाध्याय के बिना तो ये मार्ग निकलने वाला नहीं है, और पूर्वाग्रही बन करके बैठोगे तो कोई फायदा भी नहीं। उससे तुम अलग हो गए, तुमसे वो अलग हो गए, समाज में यही विषयों को लेकर के विकल्प बढ़ते रहे, क्या मतलब है इनसे? इस पर देव जिस द्रव्यों से पूजा करते थे ना, उसका चिंतन करो, मनन करो और देवों का अनुकरण करो, सही अनुकरण करो। कालांतर के ग्रंथों को छोड़ दो, रखो उनको एक किनारे, लिखा हो किंतु उससे क्या मतलब है अपने को? नहीं महाराज, सावध दिलीशो, बहुपुण्य राशो, क्या जरूरी है कि असावध्य लेश के द्वारा ही हम पूजन करें? पूजा के काल में हिंसा होती ही है, होना ही चाहिए, ऐसा नियम है क्या? हिंसा नहीं होती है तो पूजन ही नहीं है वो। जिसमें हिंसा नहीं होती वो पूजन ही नहीं कहलाता, ऐसा नियम बनाओगे तो धर्म की परिभाषा चेंज हो जाएगी, अहिंसा परमो धर्म नहीं रह पाएगा। ये प्राचीन जो देव लोगों की पद्धति है उसका अनुकरण हम अपन लोगों ने किया है, तो वो भी हिंसा नहीं करते, हमको भी हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा धर्म नहीं होता, अहिंसा परमो धर्म। तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा है? कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो अहिंसा पूर्वक ही करो। महाराज फिर हम दान कैसे दे दे अहिंसा पूर्वक? ये भी धर्म की क्रिया है। बहुत तर्क करते हैं लोग, ऐसे ऐसे व्यर्थ तर्क होते हैं, उनके ऐसे भी तर्क हैं कि महाराज आप दान भी तो एक वो हिंसा के बिना तो नहीं होता, ऐसा कहते हैं, भूत बना देते हैं उसको, पर उस पर चिंतन करने की कैपेसिटी नहीं है, नहीं कर पाते। दान में हिंसा हो रही है तो पूजन में भी हिंसा होना ही चाहिए, ऐसा नियम बनाओगे? दान हिंसा के बिना तो हो नहीं सकता, ये ठीक है? उसमें भी डीप जाएंगे ना अपन समझाने के लिए, फिर रुकना पड़ेगा वहां पर भी। दान भी हिंसा पूर्वक होता नहीं है, क्योंकि श्रावक मुनियों के निमित्त से भोजन नहीं बनाता, तो उनको दोष कैसे लगता? मुनियों के निमित्त से बनाया हुआ उद्दिष्ट कहलाता है, ठीक है ना? चार प्रकार का औद्देशिक आहार बताया मूलाचार में, क्या क्या? देखो, निर्ग्रंथों के उद्देश्य से बनाया हुआ, ऐसा कहीं नहीं बताया कि फलाने महाराज के निमित्त से नाम से बनाया हुआ, ऐसा नहीं लिखते। निर्ग्रंथों के कॉमन सब निर्दंग निर्ग्रंथों के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट भोजन, और पाखंडी साधुओं के लिए बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट भोजन, और सामुदायिक रूप से सामुदायिक जन के लिए जो बनाया जाता है ना ऐसा भोजन, वह भी उद्दिष्ट भोजन। लोगों के लिए बनाया जाता है वो नहीं, लोगों के लिए बनाया हुआ साधु को देते हैं तो उद्दिष्ट। अच्छा, देव आदि के लिए बनाते हैं, नाग देव, वो देव लोक रूढ़ी से जो बनाए, मतलब लोक मूर्ता जिसमें है वो देवों के लिए भी बनाते हैं, तो ऐसे देवों के लिए बनाया हुआ भोजन साधु को देना उद्दिष्ट है, उनको देना उद्दिष्ट नहीं, साधु के लिए देना उद्दिष्ट है। तो उद्दिष्ट आहार चार प्रकार का होता है, देखो, निर्ग्रंथों के उद्देश्य से भी बनाया हुआ भोजन साधुओं को नहीं चलता, तो किसके लिए बनाया जाए? खुद के लिए ही बनाया हुआ होना चाहिए। अतिथि संविभाग यह धर्म किसका है? श्रावक का है। तो अतिथि संविभाग का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? अतिथि के लिए विभाग करना, ये अतिथि विभाग है, संविभाग है। जो आपके लिए स्वयं बना हुआ भोजन है उसमें से कुछ निकाल करके साधु को देना, ये अतिथि संविभाग है। साधु के लिए ही सब कुछ बनाया तो ये उद्दिष्ट हो गया। तो निर्ग्रंथों के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट ऐसा जो लिख रहे हैं वो दोष लगेगा ही बनाने वाले को, बना देने वाले को भी दोष लगेगा और लेने वाले को भी दोष लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ढंग से समझना इन बातों को, बहुत चर्चा में उलझ जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते। चार प्रकार का उद्दिष्ट समझ में आ गया? अच्छा, आपने जन समुदाय के लिए कोई 8-10 लोग मेहमान अपने घर आने वाले थे, उनके निमित्त को लेकर के बनाया। तो उनके निमित्त के लिए बनाया जाता ही है, मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए नहीं बनाओगे क्या, स्पेशल उनको बनाओगे। और उसके साथ साथ उसमें खुद का भी बना हुआ है, या तो केवल उन्हीं के लिए बना हुआ है ये समझ के चलो, खुद तो नहीं खा रहे हैं क्योंकि इनका आहार अलग है और मेहमानों का आहार अलग है, उन्हीं के उद्देश्य से बनाया और उसमें से साधु को देना चाह रहा है तो वो दे नहीं सकता। जनरल आहार वृषभ सेन क्या बोलते हैं उसको, वृषभ सेन बोलते हैं, रिप्शिप सेन क्या बोलते हैं उच्चारण है, ऋषभ हमको शब्द अभी तक ठीक से नहीं सुना किसी से, रिसेप्शन रिसेप, अच्छा रिसेप्शन हम ऋषभ सेन कहते ऐसा ही सुनाई देता आप लोगों का। तो ये जनरल लोगों के लिए बनाया जाता है कि नहीं, हाँ बनाया है मान लो, और वो कुएं के पानी छान करके ही शुद्ध तरीके से ही बनाया है, सोले से ही बनाया है मान के चलो, लेकिन बनाया रिसेप्शन तो वो मुनियों को देने के लिए चलेगा क्या, नहीं, उसको उद्दिष्ट कहा है, उसको उद्दिष्ट कहा है, शुद्ध भी हो तो उद्दिष्ट है, वो सोले से बनाया है, जीवाणु छोड़ करके बनाया है तो भी नहीं चलेगा, वो उद्दिष्ट दोष से युक्त है। वो उद्दिष्ट दोष क्या होता है, उद्दिष्ट यानी उद्देश्य पूर्वक बनाया हुआ भोजन, वो उद्देश्य चार प्रकार का, निर्ग्रंथों का उद्देश्य, सामान्य लोगों का उद्देश्य, कुदेवों का उद्देश्य, पाखंडी साधुओं का उद्देश्य। इस प्रकार निर्माण किया हुआ जो भोजन होता है वह दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि को चलता नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का कहना है। जिनेंद्र भगवान भी इसको नहीं लिया और मुनियों को भी अपने शिष्यों को भी मना किया, क्यों नहीं चलता, क्योंकि उद्देश्य पूर्वक यदि करेंगे तो फिर दोष लगेगा ही, क्योंकि उसमें जो हिंसा आदि होती है वो उनके उद्देश्य पूर्वक होती है, और वो लेंगे तो ही तो हम बनाएंगे, तो उनके निमित्त से ही हिंसा होगी, वो लेते हैं इसलिए हम बनाएंगे उनके उद्देश्य से। तो मुनियों के उद्देश्य से कुछ भी हिंसा नहीं करना, ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं, मुनियों के उद्देश्य से कुछ भी निर्माण नहीं करना भोजन सामग्री, तो किसमें से जेना, जो अपने स्वयं के परिवार के उद्देश्य से भोजन है, घर में जितने लोग हैं उनके उद्देश्य से बनाया है, तो घर के सभी लोग मिल करके निर्ग्रंथ मुनि का आहार करा सकते हैं, ये अनुद्दिष्ट आहार है। अनुद्दिष्ट यानी उद्दिष्ट दोष से रहित, उद्दिष्ट यानी दोष से सहित, अनुद्दिष्ट यानी दोष से रहित। ये दोष है, क्यों दोष है, उनके उद्देश्य अगर हिंसा हो गई और उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ये मान्यता हो गई ना, मेरे लिए जो बनाया है वो हमको स्वीकार है, तो स्वीकार है तो अनुमोदना हो गई, अनुमोदना हो गई तो हिंसा का दोष लग गया। लेने वाले कैसे जानेंगे, नहीं जानेंगे तो वो चलेगा ऐसा भी नहीं, उद्देश्य पूर्वक बनाना ही नहीं चाहिए। हाँ देखो उद्देश्य, हाँ उद्देश्य से बनाया हो नहीं बनाया हो ये सवाल नहीं, उद्देश्य से बनाना ही नहीं चाहिए, ये उद्देश्य बनाना दोष है। अब बनाया है और उनको पता नहीं चला, उन्होंने ले लिया, वो बात अलग है किंतु बनाना ही नहीं चाहिए, श्रावक को ही कह रहे हैं बनाना ही नहीं चाहिए, श्रावक को ही बता रहे हैं अशुद्ध। तो शुद्ध, सुनो, अशुद्ध खाना बनता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जब शुद्ध बनाएंगे तो साधु के लिए ही बनाते हैं, ऐसा क्यों समझ रहे हैं? साधु के लिए ही हम बनाते हैं ऐसा क्यों समझ रहे हैं? हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने दिन परिवार सहित भोजन करेंगे, हम अपने उद्देश्य से शुद्ध निर्माण करेंगे, शुद्ध ही खाएंगे, इस संकल्प पूर्वक बनना चाहिए। उल्टा संकल्प क्यों कर रहे हैं फालतू, उनको क्यों बीच में ले रहे हैं, उनको बीच में क्यों ले रहे हैं? साधु को नहीं लेना, साधु को उद्देश्य ही नहीं बनाना। आप रोज खाते हो क्या? नहीं खाते। कैसे खाते हैं? अशुद्ध खाते हैं। 5-6 दिन अशुद्ध मत खाओ। ये हो गया क्या? नहीं, ये उद्दिष्ट हो गया क्या? ये उद्दिष्ट नहीं होता। अगर मैं शुद्ध खाऊंगा, ये संकल्प देखो यहां सुनो, मैं शुद्ध खाऊंगा तो साधु को भी निर्दोष आहार मैं दे पाऊंगा, ये संकल्प है। ऐसा संकल्प करना अज्ञानता है कि साधु के लिए उद्देश्य बनाएंगे तो ही वो घर आएंगे, ऐसा विकल्प करना चाहिए क्या? क्या जरूरी है वो ऐसा करना? थोड़ा ये तो कन्वर्ट करना है। मैं शुद्ध खाऊंगा तो साधु को भी दे पाऊंगा, और मेरा भोजन ही अशुद्ध रहेगा तो साधु को भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अशुद्ध साधु लेते नहीं और हम दे नहीं सकते। तो हमारे लिए जो शुद्ध भोजन बनेगा वो साधु ले सकते हैं, हमको मालूम है, तो अपने उद्देश्य से ही शुद्ध बनाना। हाँ ठीक, ध्यान रखेंगे, अंतिम 5 मिनट और 10 मिनट ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उद्दिष्ट समझ में आ गया ना? हाँ, कोई भी 4 दिन शुद्ध भोजन कर रहा है तो वो किस निमित्त से शुद्ध भोजन कर रहा है? शुद्ध भोजन किसके लिए निर्माण कर रहा है? स्वयं के लिए कर रहा है, और फिर स्वयं के लिए किया है तो सुपात्र आ भी सकते हैं और उस दिन नहीं भी आ सकते। 4 दिन 6 दिन जिन भी शुद्ध भोजन कर रहे हो उस समय आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, गारंटी है क्या? उनको बुला सकते हैं क्या? निमंत्रण दोगे तो निमंत्रण का दोष, उनके निमित्त से बनाओगे तो उद्दिष्ट दोष, अशुद्ध बनाओगे तो लेते ही नहीं। तो कौन सा रास्ता निकाले अनुद्दिष्ट भोजन के लिए? तो खुद के लिए शुद्ध भोजन करो, और यदि अतिथि आते हैं तो प्रतीक्षा करके उनके हाथ में भी वो शुद्ध भोजन डालो, ये आहार दान है नवधा भक्ति वाला, निर्दोष। क्या आज पंचम काल में, पंचम काल है कह करके हम सभी शुद्ध अशुद्ध खाने लगे ये कह करके, क्या साधु को उद्देश्य पूर्वक ही बनता है और उन्हीं के लिए हम बनाते हैं, ये नियम बना रहे हैं? ये अज्ञानता है अगर ऐसा सोचते हैं और नियम बनाते हैं। और ये भी अज्ञानता है कि पंचम काल में सभी लोग अपने लिए ही भोजन बनाते हैं और अनुद्दिष्ट भोजन नहीं मिलता पंचम काल में, इसलिए हमको निर्ग्रंथ दीक्षा लेना व्यर्थ है, हम नहीं लेंगे, ऐसा सोचोगे? ये भी अज्ञानता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पंचम काल में चलता नहीं, क्योंकि सभी लोग जो भोजन बनाते हैं निर्ग्रंथों के लिए ही बनाते हैं, इसलिए शुद्ध भोजन नहीं मिलता, महावृति बन नहीं सकते, महावृति हो नहीं सकते, हो गया खत्म कर दिया उन्होंने, धर्म को ही समाप्त कर दिया। और जिनवाणी में लिखा है कि धर्म पंचम काल के अंतिम समय तक चलेगा, दिगंबर मुनि बने रहेंगे, ये आगम के वचन व्यर्थ हैं क्या? ये आगम के वचन व्यर्थ हैं? नहीं, ये धारणा भी गलत है कि पंचम काल में सदोष आहार ही मिलता है। पंचम काल के लोगों को विवेक जागृत कर दो तो निर्दोष आहार मिलेगा। किसके निमित्त से बनाओ? स्वयं के निमित्त से। फिर साधु को कैसे दोष आ सकता है? उद्देश्य संकल्प आप अपने प्रति हो, आप जो खाते हैं रोज वही बनाओ, चीजें वही रहती है, साधु भी वही खाता है। साधु रोटी खाता है और आप धपाटी खाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जो धपाटी थालीपट धपाटी बोलते हैं उसको, उधर धपाटी बोलते, ऐसा तो है नहीं। साधु वो आहार लेते हैं जो आप ले रहे हैं, आप जिसको दे रहे हैं वो लेते हैं। आप वो इतना ही पूछते हैं ये किसके लिए बना है, पूछते नहीं ये किसके लिए बना है, इतना तो देखते हैं वो, इतना तो देखते हैं। देखो एक उदाहरण दूं, आपने परिवार चार लोग हैं घर में, भोजन करते हैं, चार लोगों का भोजन बन गया, तो चार लोगों का भोजन बन गया तो चार लोगों का भोजन तो दिखता है, वहां दिखता है कि नहीं? तो सब्जी भी अधिक रहेगी, रोटी भी अधिक रहेंगे, और चारों लोग मिल करके उसमें से अपना अपना अतिथि समीभाग करेंगे। चार लोगों का भोजन है उसमें से समीभाग करेंगे वो, तो अपने खुद के लिए बनाया हुआ एक व्यक्ति का भोजन कितना होता है? एक व्यक्ति रोटी कितना खाता है एक बार में, बोलो हाँ? रोटी कितना खाता है? भोजन 10 बजे करते हैं, रोटी कितने खाते हो? स्वयं फुल्की, हाँ फुल्की कितने खाते? पांच फुल्की खाते हैं ना, वहाँ दो बार खाता है वो, पांच फुल्की खाता है क्या? नहीं। तो पांच फुल्की यदि खाते हैं तो एक फुल्की अतिथि समीभाग का होता है, अतिथि समीभाग का। ऐसा नहीं कि अतिथि के लिए पांच फुल्की और बना के रख दिया, गलत है वो। अतिथि समीभाग के इस नियमावली में बैठता ही नहीं वो। अतिथि के लिए पांच फुल्की मत बनाओ, स्वयं के जो पांच फुल्की हैं, चार लोग हैं तो पांच 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 कितनी फुल्कियां हैं? 20। एक साधु का आराम से आहार हो जाएगा। चार फुल्की साधु लेंगे, थोड़ा सा भात लेंगे, थोड़ा सा सब्जी लेंगे, सभी चार लोगों में से जो जो पदार्थ है ना वो थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे, तो एक साधु का भोजन आराम से हो गया। इसको कहते हैं अतिथि समीभाग। अतिथि समीभाग का चिंतन करना चाहिए अच्छी तरह से, क्या होता है वो। अतिथि समीभाग का अर्थ ये नहीं कि साधु के लिए बना के खिलाया बाद में, पहले खिलाया और बाद में खुद भोजन बना करके भोजन कर लिया, तो ये पूरा उद्दिष्ट है, संपूर्णतः उद्दिष्ट है ये। ऐसा नहीं, उसी में खाना चाहिए। चार लोग हैं तो चारों लोगों के लिए परिवार समेत भोजन बन जाए, शुद्ध तरीके से बन जाए, और शुद्ध तरीके से स्वयं खा रहे हों तो साधु आसानी से उनको शुद्ध ही मिलेगा और निर्दोष मिलेगा, अनुद्दिष्ट मिलेगा, और उनके हाथ में जो जाएगा, चार लोगों का भोजन जाएगा, चार फुल्की। अब मान के चले एक ही घर में एक ही व्यक्ति है, तो क्या वो दान देने का अधिकारी नहीं? देगा वो अपनी एक रोटी देगा वो। और वहां पर अपन पहुंच गए, एक ही व्यक्ति है तो अतिथि समीभाग एक रोटी से करेगा वो, हाँ? नहीं, आधा आधा नहीं, दान की वस्तु 10% होती है आपकी। देखो आपकी धन संपत्ति वैभव आधा भी नहीं। देखो ऐसा है, भ्रामरी वृत्ति भी कहा है मूलाचार में। भ्रामरी वृत्ति क्या चीज है वो? श्रावक नहीं, हाँ कष्ट ना हो, तो आधे पेट से आप उठ जाएंगे और हम आधे खा जाएंगे, तो ये कष्ट तो हुआ, पेट भरा नहीं आपका। आपका पेट भरना चाहिए और साधु का भी पेट भरना चाहिए, तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला है आगम में, सुनो इसको अच्छी तरह से, ये चर्चा का विषय बनना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। चार लोग हैं, आधे आधे देंगे तो साधु कहां रखेंगे उसको? नहीं, आधे आधे देने की जरूरत ही नहीं। हाँ, एक की चर्चा, हाँ एक की चर्चा आप सुन लेते। एक व्यक्ति ही भोजन वो घर में है और वह चौका लगा रहा है, उसके घर में कितना भोजन रहेगा? 5 रोटी रहेंगी, थोड़ा सा भात रहेगा, थोड़ी सब्जी रहेगी और दाल रहेगा, अन्य चीजें भी हो सकती है, उसमें से कितना दे वो? तो हमारी भ्रामरी वृत्ति में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने आदेश से ज्यादा ले लिया तो दोष लगेगा ही वो, क्योंकि आप बना करके पुनः खाएंगे, उस चक्कर में पड़ेंगे, कष्ट में पड़ेंगे, आपको बाद में पुनः बनाना ही ना पड़े, ऐसा भोजन साधु को करना चाहिए। ये है भ्रामरी वृत्ति, किसी भी तरह से दाता को कष्ट ना हो, ये साधुचर्या है। और फिर क्या करें, इसीलिए रास्ता निकाला है। क्या रास्ता निकाला है? 7 घरों से आया हुआ भोजन साधु ले सकता है, साधु का भी पेट भर जाएगा और गृहस्थ भी भूखा नहीं रहेगा। भ्रामरी वृत्ति करेक्ट पलती है, कहीं किसी को कष्ट नहीं होगा। तो 7 घर की 7 रोटियां आ गई, 7 घर की 7 रोटियां आ गई। वहां पर भात आदि लिखा है आगम में, ऐसा नहीं लिखा है कि सूखी सूखी चीजें ले गया और आपने दे दिया। सूखी कितने खाएंगे साधु, और सूखी सूखी खिलाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगा उनका। पूरा सूखी ही ले आते हैं, क्योंकि भात आदि हम नहीं ले सकते महाराज, हम दूर से वहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, भात आदि नहीं ला सकते, ये नहीं है। भात आदि ले जाना चाहिए, लिखा है आगम में। सूखी चीज खिलाओगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा क्या? नहीं, सभी लोग बादाम और वो लेकर के आग करके खड़े हो गए, किशमिश बादाम और काजू, कितना खा पाएगा साधु? हाँ, थोड़ा ले लो। और थोड़ा ले भी लिया तो महाराज अभी तो 1 ही ग्रास हुआ है, अभी तो कुछ दिया ही नहीं, 1 ही ग्रास लिया आपने, कम से कम 3 लेना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हमको पाठ पढ़ाने लगते लोग, खिलाते समय बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं, 1 ग्रास दे करके संतुष्टि किसी को नहीं होती, आग्रह है, लेकिन आग्रह के साथ विवेक चाहिए। सूखा सूखा ही खिलाओगे तो उनका क्या होगा? बादाम बादाम खिलाओगे तो पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, उसकी सीमा है। आहार की एक सीमा, किसी भी वस्तु को खाने की एक सीमा है। साधु के स्वास्थ्य के लिए आहार दान दिया जाता है, ये विवेक भक्ति है। श्रद्धा के 7 भक्ति है ना, वो श्रद्धा, तुष्टि, विवेक, अलुब्धता, क्षमा, और कौन से 7 मालूम नहीं? मालूम नहीं इसलिए गलतियां हो रही है, मालूम नहीं इसलिए गलतियां हो रही है। ये देखो, हाँ ये ठीक है, क्या कहा है, सबसे बड़ी भक्ति तो विवेक वाली है। साधु को किस समय कितना क्या दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, साधु क्या ले रहे हैं, क्या लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, सब अभिप्राय की ओर ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाथ खुला है इसलिए डालते चले गए, ये भक्ति है, जबरदस्ती डालते चले गए, ये भक्ति नहीं। सब तरफ ख्याल रखना चाहिए, पहले क्या लिया, बाद में क्या देना है। आप खुद खाते समय जैसा सोचते हो ना, वैसे सोच के आहार देना चाहिए। हाँ ये है, साधु को देते हैं तो कुछ नहीं सोचते, उन्होंने छाछ ले लिया है तो दूध का ग्लास लेकर के खड़े हैं और बिल्कुल महाराज दूध लेना चाहिए आपको, ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या लिया है, और किसके ऊपर क्या देना चाहिए नहीं देखते, ध्यान में ही नहीं आता। क्या ले चुके हैं ये ध्यान में नहीं आएगा, और आपने दूध डाल दिया और उन्होंने ले लिया तो क्या होगा? तो ये स्वास्थ्य बिगड़ने का जिम्मेदार कौन? जिसने विवेक से नहीं दिया वो। तो श्रावक आहार देते समय विवेक को भी रखता है, ये विवेक बहुत अनिवार्य है। सबसे बड़ी भक्ति है ये, सात भक्तियों में विवेक, विवेक बड़ी भक्ति है। तो देखो, दो मिनट और देखो, सात घर हैं और उसके लिए क्रम रखा, एक ही श्रेणी में रहने वाले घरों से साधु आहार सात घरों का ले सकता है। ये क्यों? भ्रामरी वृत्ति की रक्षा के लिए, एक जगह किसी को तकलीफ ना हो। भ्रामरी वृत्ति की रक्षा साधु की होती है और साधक को कोई तकलीफ नहीं होती, वो भी तकलीफ में नहीं आते और हमारी चर्या भी निर्दोष हो जाती है। तो सात घर का लिया हुआ एक एक व्यक्ति है, मान लो सात घरों में, और वो भोजन बनाए हैं तो कितने कितने, एक रोटी ले आएंगी कि नहीं ले सकता है साधु? गलत है क्या रोटी ले आना, भात ले आना? आपको कैसा लगता है? शुद्धता होनी चाहिए, ईर्ष्यापद से आना चाहिए। अब सात घरों का जो क्रम रखा है उसके पीछे भी बहुत बड़ा अभिप्राय छिपा है। क्या छिपा है? कि पास से आएंगे तो ईर्ष्या, बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा और ईर्ष्यापद समिति अच्छी पलेगी, जीव रक्षण होगा, देखते हुए आएंगे और लाने भोजन को जब ले जाते हैं तो उसमें एक बड़ा भोगन, क्या बोलते उसको, करंट, करंट, करंट डब्बा, हाँ एक बड़ा डब्बा, उसमें सभी चीजें रख दी और ऊपर से ढक्कन ढक दिया, उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, फिर ले गए। उसमें अशुद्ध जीवाणु वगैरह नहीं बैठना चाहिए। गाड़ी आती जाती रहती है, धूल वगैरह पड़ती है तो कपड़े पर पड़ती है, अंदर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि थाली में लगा दिया और एक कपड़ा ढक करके ले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें धूलिकण घुस जाते हैं, गहराई में घुस सकते हैं, छोटे छोटे धूलिकण। तो केवल कपड़ा ढक करके लाने से काम नहीं चलने वाला, शुद्धि का ख्याल रखना पड़ेगा। एक करंड में, क्या बोलते उसको, डब्बा में, डब्बा ही बोलते, एक डब्बा में ढक्कन भी होना चाहिए उसका, जो बड़ा होता है। उसमें सभी चीजें, कटोरी रखो या ऐसे ही ले आओ, उसमें सभी चीजें रख करके ला सकते हैं। इस प्रकार विधि होती है। और बहुत दूर से लाना है तो भी ईर्ष्यापद से आते हैं तो कोई दोष नहीं है। वो ईर्ष्यापद से नहीं आते हैं इसलिए लिखा है कि दूर से नहीं आना चाहिए। और ईर्ष्यापद अगर आपका पल सकती है तो कोई कहीं से भी दोष आने वाला नहीं, लिखा है वहां। ये क्यों मना कर रहे हैं? आठवें घर से नहीं आना, दूर से नहीं आना, ये क्यों मना कर रहे हैं? ईर्ष्यापद शुद्धि नहीं पलती इसलिए। और ईर्ष्यापद शुद्धि से ही आने वाला श्रावक हो तो आ सकता है, परंतु सात पर स्टॉप क्यों लगाया उन्होंने? आठवां घर का नहीं चलेगा, मान के चलो सात लगातार हैं और आठवां भी उसी के बाजू में है, उसका लेने को नहीं कहा। क्यों? सात घर में तो साधु का पेट भर रहा है, जरूरत क्या है आठवें घर का? आठवें घर की जरूरत क्या है? सात घर से पेट नहीं भर रहा है क्या? भर रहा है। और मान लो आठवां घर वाला भी आ गया, पास में था, एक श्रेणी में था, क्रमबद्ध था, तो वो भी आकर के देता है तो आपको दोष कहाँ लग रहा है? आठवें घर का भी ले रहे हो तो साधु को दोष किधर से आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो? साधु का जितना पेट है उतना ही लेंगे ना। अगर मान लो आठ घर नहीं, दस घर, बारह घर के भी आ गए तो हम जितना लेंगे उतना ही लेंगे ना। तो परसेंटेज कम करेंगे हम, क्या करेंगे? दस दस लेते थे, आप पांच पांच लेंगे। इस तरह से आहार होता है, इसके पीछे बहुत चिंतन गहराई से करना चाहिए। जो निर्दोष चर्या होती है वो भ्रामरी वृत्ति से, अनुद्दिष्ट से और श्रावक के विवेक से, साधु की चर्या निर्दोष संपन्न होती है, ऐसा अपने को चलना है। डब्बा में लाना, देख करके लाना, एक एक जीव को बचाते बचाते आना, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो देने मात्र से ही मतलब हो ऐसा नहीं, देख करके चलना चाहिए। देते समय भी कहा है, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ चींटियाँ होती, कई कई चौकों में तो चींटियाँ होती ही हैं, नीचे ही नहीं देखते। देखते देखते दोनों तरफ ख्याल रखना चाहिए, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, हमको क्या देना है, लोग क्या दे रहे हैं, क्या दे चुके हैं, क्या देना चाहिए, सब जगह ख्याल रखते हुए देना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हैं, चौके में ही हिंसा होती है, नीचे देखेंगे तो, नीचे नहीं देखेंगे तो। टाइम बहुत हो गया, जिनवानी रे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहा तेजन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।